गुरु से उपदेश नहीं लिया, नाम लिया, अपनी मनमुखी साधना में वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे। पृथ्वीला प्रदक्षिणा देवा सो तो इस मन का लखे न भेवा, कि सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा दे आवे, यानी इतना सिद्ध पुरुष हो जा, सिद्धि से आकाश में उड़ जावे और सर्वाधिक स्वर्ग अधिक में बैठे जाई और 14 भवन पलक फिराई। अपनी सर्वशक्ति से जैसे सुखदेव ऋषि स्वर्ग में चले जाते थे, तो भी कहते हैं कि इस मन का ये मनमुखी साधना थी उसकी, तो भी उस मन को मन के अनुसार साधना करके वह सथाई नहीं हो पाए। सो तो मन के हाथ बेकाना बहोर भय है शुक्र सवाना। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी, आकाश में उड़ जाते थे, ना जाने कितने लोगों को चमत्कार दिखा के वाह वाह के पात्र बनते थे। बंदी छोड़ भगवान कहते हैं गरीबदास जी कि वो सब मन के हाथ बिके हुए थे, मनमुखी साधना कर रहे थे। सो तो मन के हाथ बिकाना बहोर भय है शुक्र सवाना। वो फिर कुत्ते और सुअर की दुनिया में चले गए, वह सिद्ध पुरुष जिनको सही नाम पूरे गुरु से नहीं प्राप्त हुआ। कोटक तीर्थ जग कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। करोड़ करोड़ तीर्थ कर लेवे और यज्ञ दान कर लेवे, लेकिन उस परमात्मा के सच्चे नाम के बराबर नहीं है। कोट कोट तीर्थ जगदाना, यज्ञ जग, क्योंकि महाराज ने भाषा को विशेष महत्व नहीं दिया। जैसे भी अपने हरियाणवी ला लो, किसी भी प्रकार के क्षेत्र की जैसी भी भाषा होती है उसी में समझाने की कोशिश करी है। कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। गरीब तीर्थ जग तीर्थ तीर्थ यग युग युग करो, पावत ना जगदीश काशी करवत लेत हैं वो आण कटाव से। ओए होए, पहले क्या कर रखा था इन अनजान साधकों ने, इन भोली भाली आत्माओं को गुमराह करने के लिए काशी के अंदर एक क्रौत लगा रखा था। क्रौत उसमें क्या बता रखी थी कि जो अपनी गर्दन इस क्रौत से कटवा लेगा उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। वो कैसे बना रखा था, गंगा के किनारे एक पक्का स्ट्रक्चर बनाकर और उसके बीच में एक बहुत नीचे जाकर गुफा बना रखी थी और वहां पर उसको लिटा दिया जाता था कि तू सो जा आराम से, आंखें बंद कर लेना, उस परमात्मा का हुक्म होगा। कहते उस समय वो क्रौत अपने आप आ जाएगा, वो अपना बैठ जाता था, लेट जाता था और उधर से उसका कंट्रोल हैंडल कितना दूर स्थान पर था, उनके इशारे होते थे, वहां लेटा दिया, आप जाकर के वहां गुप्त रूप में उस क्रौत को नीचे को गेर दिया और फिर वो अपना ऐसे सिस्टम करा रखा था कि उसकी गर्दन को ऐसे कर करके और टुकड़े कर देता था और फिर वो नीचे एक पटड़ा सा ला रखा था, वहीं से कंट्रोल होता था, उसको नोकानो गंगा में सरका दिया करते थे। ऐसा वहां पर काशी के अंदर इन अनजान साधकों ने बड़ी बड़ी आत्माओं को इतना गुमराह कर रखा था। तो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, गरीब तीर्थ जग युग युग करो, पावतना जगदीश काशी क्रोत लेत हैं वो जा कटाव शीश। तीर्थ वर्त अरुजोग जुगादम, नाम बिना सब कूड समादम, कर्म कांड से पावे राजम, जन्म पूर्व ले बिगड़े काजम। तीर्थ वर्त योग चाहे कितने दिन तक करते रहो, नाम बिना सब कूड़ संवादम, जिसके पास नाम का जाप नहीं है, ये वाद विवाद कितनी भी वार्ता कथा वो सुनावे वो कूढ़ यानी अनजान साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। कर्म कांड से पावे राजन अर्जनम पुरबले बिगड़े का जन्म। जैसे भी कोई तप करता है, कोई यज्ञ साधना कर लेता है, धर्म अधिक कर देता है, तो उसके प्रभाव से अगले जन्म में वो राजा हो जाता है, और राजा तीसरे जन्म में फिर पशु जूनी में चला जाता है, क्योंकि भगवान के नाम की भक्ति का बीज उस प्राणी में प्रवेश नहीं हुआ। तप से राज राज से तेजम पाठ पटंबर भोग सेजम। तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप से राजा बने, राजा अपने मौज मारे, और तीसरे जन्म में फिर वही कुत्ते और गधे की जोनी में वो राजा चला जाता है जो परमात्मा से विमुख प्राणी था। कर्मकांड सुरगापुर बासा फिर घोर कोंड पड़े नरक निवासा। गज तुरंग पाल की अर्था नाम बिना सब दानव व्यर्था। कितने ही मौज आपने कर रखी है, लेकिन जितने भी आप दान धर्म कर रहे हो बिना नाम बिना गुरु के अगर करते हो तो नाम बिना सब दानम व्यर्था, ये सभी दान आपके व्यर्थ हैं, इनका कोई लाभ आपने नहीं मिलेगा। कैसे? गुरु बनाया नहीं और कितने ही भंडारे कर दिए, कहीं पर हरिद्वार में जाकर भंडारा कर दिया, या वैसे भी अपने मनमुखी कोई साधना करवाते रहे करते रहे, अच्छे पुण्य कर दिए, किधर गौशाला में दे दिया यानी पशु पक्षियों को भी खिलाते रहे, इन सारों का परिणाम क्या होगा? जिन्होंने नाम नहीं ले रखा उन प्राणियों को इस किए हुए पुण्य का परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं बनेंगे। अगले जन्म में उनको पशु जुनी मिल जाती है। मान लीजिए जैसे कई कुत्ते आपने देखे होंगे, उनको ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है। मेरे ख्याल में मनुष्य जीवन में भी 50% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। बढ़िया कोठी के मारे ना अलग से उसका कमरा होगा, और कई तो ऐसे कहते हैं कि हमने तो अपने टोमी के ऊपर विशेष कूलर का प्रबंध कर रखा है उस कमरे में, और ऊपर पंखा चलता है। दिन में 3 बार नौकर स्नान करवाता है और डॉक्टरी जांच करके उसको भोजन मिलता है। कार में चलता है, ड्राइवर अगली सीट पे और कुत्ता पिछली सीट पे। उसके जो मालिक है चलाने कोठी वाला, वो तो ड्राइविंग कर रहा है और वो कुत्ता देवता पिछली सीट पर अपना ठाठते जो बैठा, जो किस प्रकार मालिक बैठता है। अब उस अनजान आत्मा ने दान गणे कर रखे थे, उस दान की सुविधा प्रतिफल उसे ऐसा मिल गया, कार भी मिली, खाना भी इतना बढ़िया मिला और अच्छा स्थान रहने को मिला, लेकिन मानव शरीर नहीं मिला। अगर उसने नाम भी ले रखा होता तो मनुष्य शरीर मिलता, और यह सुविधा उसको मानव शरीर में प्राप्त होती। इसलिए महाराज कहते हैं नाम बिना सब दानम व्यर्था, नाम बिना वो दान व्यर्थ गया, क्योंकि पशु जूनी में बढ़िया स्थान समय अपना व्यतीत कर लिया और अगले जन्म में उससे भी बुरी जूनी में चला जाएगा वो प्राणी, फिर 84 का गेड़ लंबा चौड़ा बहुत लंबी व्यवस्था हो जाती है। तीर्थ व्रत दान पुन कीजे चरण कमल को संकल्प दीजे। ये तो प्राभक्ति बैरागा गुण इंद्रिय मन मन सा त्याग्या। तन मन धन संकल्प कर दे ही सो साधु है भक्ति स्नेही। संकल्प किया संख गुण होई अकल अपिंडी अखंड बीज है सोई। सोई बीज भोग्या भगवान ना संकल्प किया द्रौपदी दाना। कंजुल सुदामा अर्पण कीने पलम पुरी राम रच दीने दान पुन की करे न आशा जो अर्पे सो पुरुष निवासा शिकल बिकल व्यापै ना कोई साधु रहे चरण मुख गोई मेर कुबेर और रोटी दाना चरण कमल अर्पण कर प्राण। इस प्रकार महाराज बताओ से कि भाई दान पुन भी करे तो बिना किसी इच्छा के करे। हमने मान लीजिए कोई अपनी मनोकामना पूर्णा के ताई और कोई भी धर्म का काम बोल दिया कि ऐसा करवा दो मेरा ये काम हो जाए, ठीक है वो काम आपका होगा लेकिन वो पुण्य आपको आगे काम नहीं देगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। यदि हम अपना कर्तव्य समझकर और धर्म पुण्य करते रहे और नाम लेकर के गुरु से, तो वो हमने दोनों फल देते हैं। दोनों फल देवेगा, जैसे वो काम भी सरेंगे जो आने वाले कठिन हमारे कर्म थे वो भी हल्के होंगे और साथ में परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। दान पुण्य की करे ना आशा जो अर्पे सो पुरुष निवासा शकल बकल व्यापै ना कोई साधु रह चरण मुख गोई। अब कई ये कहते हैं शकल बकल कहते हैं कि जैसे हम धर्म पुण्य भी कर रहे हैं परमात्मा का नाम भी ले रहे हैं और एक काम कोई ना सरे किसी कारण से तो सारे उलाने दे देंगे भगवान ताई। मन न्यो भी करता था, मन नाम भी ले रखा से, मन दान भी बतेरा कर लिया, पाठ भी करवाए। कहते ये नहीं, अपना देखा फिर तमाशा उस सतगुरु का, हो सकता है कोई ऐसा कर्म हो कि थोड़े बहुत कष्ट में और बड़ी बीमारी टलती हो। अपने मंदी छोड़ पे विश्वास रखे। सकल बकल व्यापै ना कोई साधु रह चरण मुख गोई मेर कुबेर और रोटी दाना चरण कमल अर्पण कर प्राण। चरण कमल धुन लाई ये हरदम बारंबारे, गरीब चरण कमल धुन लाई ये हरदम बारंबारे, अर्थ धर्म का मोक्ष होही साहेब के दरबार। कोट बदर टूटन तेरा ख्या जा साधु का बाल निभाका, मुटरी बांध रहे जो न्यारा जाके पड़े शीश पे जारा, इच्छा रूप करे जो दाना अपना वृद्ध लजावे बाण। इच्छा रूपी जो दान करते हैं वो कहते हैं भक्ति को लजा रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ अभी। इच्छा रूपी करे जो दाना अपना वृद्ध लजावे बाण, विद्या वेद पढ़े चित लाई दर्वधार बूढ़ी पंडिताई। विद्वान लोग कथा करने वाले महाराज कहते हैं इन्होंने काम बिगाड़ लिया सारा, ये पैसे के लालच में कथा करन लग गए और जो भी उन सुनने वालों को पसंद आवे वो सुनावे, चाहे वो उनके उनको पथ भ्रष्ट करे चाहे उनको वो नरक में ले जावे। उन्होंने ये उद्देश्य बना लिया कि सुनने वाले राजी होने चाहिए। अगर वो नौके हैं मूर्ति पूजा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, तीन में तीन वह करनी चाहिए और बढ़ावा दे देंगे उसने, उन्हें तो उन पैसे से तात्पर्य है। लेकिन भाई या कड़वी दवाई खाए बिना या सच्ची बात सुने बिना इस जीव का उद्धार कभी नहीं हो सकता। कहते हैं विद्या वेद पढ़े चितलाई दर्वधार बूढ़ी पंडिताई। दर्व कहते हैं धन को, इस धन की धार में या विद्वता नष्ट कर ली, बूढ़ी पंडिताई डूबगी वो विद्वता, भगवान की जो पंडिताई खत्म होगी। इतने पंडित आशा माही गुण गायत्री का बल नाही, सुतक पातक करें आहारा पंडित जी में जग जो नारा। सुनो आज सन का दिक धर्मा, सुतक पातक नीचे कर्मा। ये सुतक पातक जीवना ये नीच कर्म होते हैं, ये पाप के भागी होते हैं। पहले तो कहते हैं कि किसी का, महाराज बता रहे हैं, कोई व्यक्ति मर जाता था तो ऐसी आंट लगा दिया करते कि इब इसका वो नहीं करना, अंतिम वो करते थे वो प्राणा, कहते इसका तर्पण नहीं करना, इसको बैतरणी से पार करेंगे हम। और जब करेंगे कब करोगे कि इसका कारज करना पड़ेगा तुम्हें, तेरा मी का तार निकाडा कारज जीमणता ही। तेरा मी को जो समापन करना था वो समागम वो नहीं कराया, क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई कार्य और करना पड़ेगा तुमने, ना तो इतना अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ भगवान कहते हैं ये दर्वधार बूंदी बूढ़ी पंडिताई, इस माया की लहर में वो ज्ञान बह गया उन लोगों का। पंडित कौन होते थे, पंडित बताता हूं आपको, जैसे पंडित कैसे होते थे, जैसे गामा जी पंडित थे, पंडित नाम है विद्वान का जिसने पूर्ण ज्ञान हो कि ऐसे कर्म करने से हमें ये हानि होगी और ऐसा कर्म करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट होगा, हमारे को पाप लगेगा। सुदामा ब्राह्मण थे, पंडित थे, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचान है, जो आत्म तत्व का ज्ञान जिस प्राणी को हो जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है, नहीं कोई जात की फीत से ब्राह्मण नहीं बनता। अब जैसे कोई वैद्य कवावे, उनका कोई बड़ा व्यक्ति वैद्य था, पांचवा छठा दादा, और अच्छा वैद्य था। अब उसके बाद उन सब ने अपना पीछे वैद्य रख लिया, अब वो एक समूह बन गया वैद्य। अब अपने पीछे लिखते हैं कि रामनाथ वैद्य, और कपड़े की दुकान है। इब उस तरह को पूछे पेट के दर्द की दवाई को मन ना मेरा वैद्य क्यों लिख रखा, वो एक वैसे परंपरा बनी हुई काम वैद्य थे, हमारे पूर्वज जो है हमें वैद्य के नाम से जाने जाते थे। इसी प्रकार पंडित एक जाति को हमने मान लिया, चाहे किसी ने कति अनपढ़ हो वो भी नो पंडितता में, वो तो एक परंपरा बना ली, वो एक समूह का नाम पंडित धर लिया, वो पंडित नहीं है। पंडित वो है जो मार्गदर्शन करते हैं, जिनको विद्वान कहा जाता है, और वो पंडित जो है उनके द्वारा किया गया गुमराह प्राणी भटकता है, भ्रमता है, वो दोषी कहला है। तो उसके लिए महाराज कहते हैं सूतक पातक नीचे कर्मा, सुनो आज सनकादिक धर्मा, ये सूतक पातक नीचे कर्मा। सुदामा जी पंडित थे, उसकी पत्नी ने बहुत ही प्रार्थना विनय करी कि देखो हम बहुत टोटे में दुखी हो रहे हैं, और बच्चे हैं ये भी बेचारे कई बार तो रोटियां बिना सो जाते हैं, और आप कहते हो कि कृष्ण जो राजा है मथुरा के द्वारका के, वो मेरे साथी थे, सहपाठी भी थे, और सहपाठी का प्रेम कुछ नारा होया करें, आप जाकर के उनसे कुछ धन मांग लाओ। तो सुदामा ने बोला बात सुन भगवान, कि ये शरीर जा सकता है पर सुदामा मांगे को ना, ब्राह्मण का फर्ज मांगन का नहीं बनता, मेरे को कर्म में मार रह रही है, मैंने पिछले जन्म में पुण्य नहीं कर रखा, इसलिए मुझे ये उपलब्धि नहीं हो सकती। वह फिर पीछे पड़ी रही, नहीं मानी तो फिर चला जाता है। वहां जाकर भी कृष्ण ने पूछा कि सुनाओ महाराज जी के हाल से आपका सुदामा, अगजी मोह दोरी से थरे बाग थे, अपने मुंह तन्यो ने कहा कि महाराज जी कति बयान माटी हो रही है, कतई नहीं कहा, अगमोद से महाराज जी दया से, और सातवें दिन नो का नो उठकर आ गया, अपने मुंह से ना मांगा और ना उन्होंने दिया। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहते हैं वो चावल खाके जो छुपा कर लुको रहा था, अब ये देऊं तक देऊं कैसे राजा ने, गरीब आदमी छुपा छुपू का अपना बस घरवाड़ी ने बांध दिया था, चावल भून के दो मुठ्ठी, और उसने अपने लको का काख में दे लिए। कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक बात होता, भाभी ने क्या भेजा मेरी खातिर, बोले कोई ना काख ना न्यू करे, कहते हैं जब वह चादर खोच ली जिसमें वह एक पल्ले में बांध रहा था, और ने बोला बड़ा आनंद आया तो आज आपके चावल में। उसके प्रतिफल में महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण ने और सुदामा पुरी यानी उसका बहुत सुंदर महल बना दिया, बहुत अच्छे पैसे दे दिए, कंदल सुदामा अर्पण कीने पलमय पुरी राम रच दीने। कंदुल कहते हैं चावल को और सुदामा ने कृष्ण जी को अर्पण किए और पलमय पुरी राम रच दीने, उन चावलों के खाक को खाके। अब यहां कहते हैं कि देते को हर देत है, जहां तहां से आण और ना दिया फिर मांगता करो, परमात्मा सुननी का। सनक सनंदन बोझो भाई नीचे कर्मा लाग गए काई, यानी माड़े कर्म करते हैं नुकसान में जाओगे। ऊंचे कर्मा कर्म कटाही सो पंडित तुम जानो नाही, ऊंचे कर्म करते हैं के काम पाप कट जाते हैं, ये कर्म कटते हैं वो तुमने ज्ञान नहीं। जीव यज्ञ में होम कराई सो वह यज्ञ काम किस आई, कहते हैं यज्ञ के अंदर महाराज जी बता रहे हैं कि तुम जीवों को मरवाते हैं। कैसे यज्ञ कराते थे राजाओं से, उनके हाथ से अजा, अजा कहते हैं बकरी को, बकरी कटवाते थे और उसको फिर न्यू का न्यू आवन पूर्ण हो लेता, उस बढ़ते हुए बट में उस न्यू के न्यू बकरी को डाल देते थे और फिर वो मांस जब हो जाता था उसको बाद में वो सब अपने आप बाद में भुने हुए कच्चे मांस को जैसे भी जिसे उन्होंने नमक मोक लगा के और फिर वो प्रयोग करते थे, कहते हैं प्रसाद बन गया, अब इसका पाप नहीं। महाराज जी कहे इतने अन्नदान बन गए जीव के स्वाद की खातिर, ने भी ना सोचा कि इतना अनर्थ करने लग रहे धर्म के काम में और जीव इंसा बता क्यों कृपा पड़े। जीव यज्ञ में होम कराही, जीव यज्ञ में होम यानी उसमें डाल दिए और सो वह यज्ञ काम किस आई, एक जीव अचराचर माई शिव ब्रह्मा की पदवी ताई, एक ही जीव है इस 21 ब्रह्मंड तक, चाहे वो कीड़ी है और चाहे शिव ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश तक है, एक जैसा दुख है एक जैसा वह सुख आवास करते हैं। कर हैं पाप करते हैं धर्मा मनुष्य पकड़ कर होम्या यज्ञ नर्मा, अश्व घोड़ा वृषभ बैल ये अनपढ़ते बंदी छोड़ गरीबदास जी और संस्कृत बोल रहे हैं, अश्व वृषभ और अजा जराई, अजा कहते हैं भेड़ को, अश्व घोड़ा और वृषभ बैल और अजा भेड़ कहते हैं ये कटुआ कह और तुमने जुलम करवाया, अश्व वृषभ और अजा जराई इनका पाप गिणा नहीं राई, वो जो ब्रह्मा विष्णु महेशा अचराचर का कहा अंदेशा, वो जो ब्रह्मा विष्णु महेशा तिहूं देव का ना उपदेशा, कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आप पूछ लीजिए किसी भी शास्त्र ने उठा के, इन परमात्माओं ने कभी ऐसा जुल्म करने की खातर नहीं कहा कि तुम ऐसे पाप करो, ये अजा कटाओ बकरी कटवाओ या बैल कटवाओ। गरीब पंडित ज्ञानी बूढ़िया कीने जीव विध्वंस, कीड़ी कुंजर आत्मा सब गट एक अंश, कीड़ी चीटी कुंजर हाथी जो कहीं में एक का आत्मा है, कीड़ी का वही ममता है अपने बच्चों के प्रति, वो भी मारो मार रहे ऐसे सारे दिन, और हाथी भी अपने बच्चों की खातर अपने पेट की खातर, जिस प्रकार चीटी है वही सुख वही दुख कीड़ी में और वही हाथी में, कीड़ी मारने का भी वही पाप है और हाथी मारने का भी वही पाप है। कीड़ी कुंजर आत्मा सबगट एक अंश, सब में एक ही ईश्वरीय शक्ति यानी आत्मा है। राजनीति काली का भक्षण पंडित जीवघात अपलक्षण, और फिर क्या करते हैं जो प्राणी बीड़ी शराब मांस तमाकू दारू का प्रयोग करते हैं, क्यों मांस फिर दारू बिना ना खाया जा, वो शराब की भी आदत पड़ जाती है इंसान को। सुरापान मदमाशा हारी गमन करें भोग पर नारी, 70 जन्म कटते हैं शीशम साक्षी साहेब हैं जगदीशम, जो ये जुल्म करते हैं सुरापान करते हैं, सुरापान माने दारू पीना, मद कहते हैं सुरापान मद यानी अमल को, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सुरापान मदमासाहारी गमन करें भोग पर नारी, 70 जन्म कटते हैं शीशम साक्षी साहेब हैं जगदीशम, बंदी छोड़ कह रहे हैं गरीबदास जी कि जो ऐसे जुल्म करते हैं ना उनके 70 जन्म सिर कटते हैं, कभी तो बकरा बनेगा और कभी वो और कोई ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से उसकी गर्दन काटी जाओगी। पर द्वारा स्त्री का खोलने 70 जन्म अंधे हो डोलने। अब यहां बताते हैं कि कितना पाप होता है एक दुष्कर्म का। पर नारी को बुरी नजर से देखना, महाराज बताते हैं उसका कितना दुष्परिणाम होता है बुरे कर्म करने का, कि 70 जन्म वो प्राणी अंधा होता है। कभी गधा बनकर अंधा होगा, कभी कुत्ता बनकर अंधा होगा, कभी अन्य जीव की जीव दोनी पाकर वो अंधा होगा, और फिर मनुष्य बनकर भी वो अंधा होगा। पर द्वारा स्त्री का खोलने 70 जन्म अंधा हो डोलने। मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म स्वान के जानी। एक बार जो दारू प्रयोग करते हैं प्राणी उनका 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म स्वान के जानी, जोते बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई। मर्ग मोर मारे मैं मनता, अचराचर हैं जीव अनंता। जीवा सिवा जो हिते प्राणा निमा, नास गया हम जाण्या। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मो मनसर बिस्मिल लाई, जीव्या स्वाद हिते कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना, राजा के सिर धरा भयाना। अपनी छपरी बंधे ना कोई, नगर अमान कर नर लोई। कर्मशाल कर्मों की बाजी, भूल रहे हैं पंडित का जी। गरीब शब्द हमारा मानियो, सुनते हो नर नारे। जीव दया बन कोफर है, ये चले जमाना हारे। ऐसे दुष्कर्म करने वाले प्राणी का बहुत बुरा परिणाम होगा, तो ऐसे जुल्म हमने नहीं करने चाहिए। मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म स्वान के जानी। एक बार दारू पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं, और इससे भी ज्यादा पाप उक्का बीड़ी तमाखू पीने वाले को कहते हैं। कहते हैं सो नारी जारी करे सुरापान सो बार, एक चलम हुक्का भर वो डूब काली धार। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि कितना पाप होता है इसको एक बार दारू पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और ऐसे 100 बार कर्म करे, 100 से गुणा कर दीजिए 7000 जन्म हो गए। 7000 जन्म कुत्ते के होंगे उस प्राणी के जो एक बार हुक्का पीवे, यानी तम्बाकू प्रयोग करे, चाहे वो खावे या सूंघे, और चाहे सिगरेट में पीवे, और चाहे हुक्का बीड़ी में प्रयोग करता है, उसका महाराज बता रहे हैं कि उसको इतने ज्यादा जुल्म होंगे, उसको इतना पाप होगा। अब नाम के बारे में मैं तो बता रहे हैं कि हम मनमुखी साधना करते हैं। कई भाई कहते हैं कि परमात्मा के केवल स्तुति कर लेने से, आरती करने से, या परमात्मा के दर्शन करने मात्र से, कई कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जैसे कभी स्वप्न में कभी वैसे भी, तो महाराज कह रहे हैं ये तेरी पिछली कमाई काम कर रही है, लेकिन मुक्ति का अभी तक आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। और नाम जो है अधिकारी बिना दिया नहीं जाता, और जब वैसे दे दिया तो काम नहीं करता। किस प्रकार कि जिस प्रकार एक स्वात सीप होती है समुद्र में, जिसमें मोती बनता है, जैसे आपने शंख देखा होगा, शंखले से होते हैं, ऐसी उसकी आकृति हो सके, ऊपर का शरीर उसका शंख जैसा हो है, लेकिन उसका आकार थोड़ा चपटा चपटा होता है, उसमें एक जीव होता है, और वो जीव एक पानी की बूंद लेता है आकाश से, वो बूंद उसमें प्रवेश कर जावे आकाश के पानी की, سماتی بولتے ہیں اس کو، اور وہ بوند اوپر کا جو زل اس کو مل گیا تو وہ اس میں موتی بنا دیتا ہے. یدی کب وہ جل اس میں کب پرویش کرتا ہے؟ جب اس کا وہ منہ کھلا ہو، اندر اس کو تڑف بنتی ہے اور اوپر آ کے وہ سمندر کے اوپرلے حصے میں منہ کھول دیتی ہے. اس میں بارش ہو رہی ہو تو اس کی ایک بوند اس کو کافی ہے، اور اس بوند کو لے کر منہ بند کر کے وہ واپس پانی میں چلی جاتی ہے، اس سے وہ موتی بن جاتا ہے. اگر وہ منہ نہ کھلا ہو اور چاہے اس کے اوپر پھر سارا اندر برس لے، کتنی تگڑی بارش ہو جاوے، اس میں وہ موتی نہیں بن سکتی. اسی پرکار جس پرانی کی انتر آتما میں سچی لگن بھگوان پانے کی اور نام لینے کی ہو جاتی ہے، اور اس تڑپ کے ساتھ وہ نام لے کر پھر اپنی سادھنا شروع کرتا ہے تو اس کو لابھ ہوتا ہے. یعنی نام نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نام لے بھی جاوے گا تو اس کو کوئی لابھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں وہ کسک نہیں ہے. اس کا ادھارن دیتے ہیں بندی چھوڑ کے. ایک سمے اس پاربتی کے جو بھگوان شیو کی پتنی ہے، 107 جنم ہو لیے، 107 جنم اس کے ہوئے، اور پرتیک جنم میں وہ بھگوان شیو کو ہی اپنا پتی ور ہے، اور وہ مر جاوے بھگوان شیو نیو کا نور ہے. 108واں جنم جب اس کا ہوتا ہے اور گوری نام سے وہ اتپن ہوتی ہے، شیو جی سے بیاہ ہو جاتا ہے، اس میں ایک دن نارد جی جاتے ہیں اور پاربتی سے کہتے ہیں، ماتا اکام بھائی کہ آپ ابھی تک جنم اور مر رہے ہو اور آپ کے گھر میں اتنی بڑی اوستو اور آپ پھر بھی دکھ پا رہے، کیسے بھائی؟ میرے سمجھ میں نہیں آئی تیری بات، کیا کہنا چاہتا ہے نارد تو؟ اکماتا میں بتاؤں، بھگوان شیو کے پاس ایک ایسا منتر ہے، امر منتر، یدھی وہ آپ کو سنا دیں، یعنی آپ اس سے نام لے لو ان سے، وہ منتر آپ کو بتا دیں تو آپ کی مکتی ہو جاوے. واہ بولی ناردیا، بات تو بھائی میرا جچی کو نا، کیوں نہ جچی؟ نارد جی نے کہا کہ آپ کے 107 جنم ہو لیے، 107 بار تو آپ مر چکے اور 108ویں کی تیاری ہو رہی، آدھی عمر جا لی آپ کی. اک بھائی ایک بات بتا، بھگوان شیو جی مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، میرے لیے وہ جان بھی دے سکتے ہیں، اور تو کہ وہ نام لے رہے اور میں مر جاؤں، مجھے مرتی دیکھتے رہے. نارد جی بولے کہ جان دے سکتے ہیں پر وہ نام نہیں دے سکتے. نے بولا بھائی تو کہ میں انگریزی سے بول رہا ہے تو سیدھی بتا، میں نے کہ بات ہے، بات یہ ہے ماتا جی کہ آپ نے ہردے سے پکار نہیں کری ان سے، ابھی تک آپ ان کو ایک پتی روپ سے دیکھ رہے ہو، اور جب اس کو دوسری درشٹی سے بھگوان سروپ مان کے اور گرو روپ سے اس کی درشٹی کون سے دیکھو گے اور چرنا میں پڑ کر چھکر ہو گے تڑپ کے ساتھ، اور پھر پرارتھنا کرو گی جب یہ نام ملے گا، اور کام بھی جب ہی کرے گا. اور بتاؤں کیا کہ جو تھرے گھر میں وہ 107 کھپر ٹنگ رہے ہیں نا، وہ کنکال تیرے سر کے ہیں بھائی، میرے سر کے؟ ہاں تیرے سر کے ہیں بھائی. اور وہ کئی بھگوان شیو جی بھی اپنے گلے میں گائے لے، گنتی کرے ہے 107 بار مر لی نربا، کئی بھی سمجھ میں نام تھی اس کا نام لے لوں، پر کہتا کوئی نا. وہ بولی رہتا نے تو ظلم کر دیا، میں کیتا جوگی بھی نہ چھوڑی تو نہیں، غلط مانوں تو وہ دستی نا، کیونکہ وہ 107 سر پر آج پوچھوں گی وہ کس کے سے، آج پوچھئے مت نا، تو پایا میں پڑ جائیے، بھی پوچھنے میں لگی رہے گی باوڑی، پیرا میں پڑ جانا اور جب چھوڑنا جب نام دین کی ہاں بھر لیں، کہ دن میں پوچھا کس کے ہر طرح جت ہے نہ جت ہے. ارے بھائی ٹھیک سے، تو اس کو ایسی لگن لگی کہ نارد بالکل صحیح خبر لیا کرے، और आज मेरे कोई 16 दिन आगे हैं और 107 दिन हमने भोग लिए। अब देखो विचार करने की बात है, एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ की थी और पार्वती वहां चली जाती है अपने पिता के घर पर। पार्वती ने अपनी मर्जी से शिव से शादी करी थी, राजा दक्ष नहीं करना चाहता था, कति नहीं करना चाहता था, और पार्वती ने अपनी चिट्ठी लिखकर नारद जी को दे दी थी। अक नारद जी मेरा यू काम तो जरूर कर दे कि शिव आ जावे शादी अपनी बरात लेकर, मैं जानू मेरा काम जाने। नाटन दे पिताजी ने शिव जी आया था तो और भी राजा आ रहे थे, वो भी आ गए, और भी बहुत गणे देव आए हुए थे, तो पार्वती ने शिव के गले में माला डाल दी, अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। उसने दक्ष ने कह दिया था कि मेरे घर पर नहीं आ जाएगी आज के बाद, तू अर्जा कर ले ब्याह अपना, भाग जाए यहां से, तो वो चली गई थी। एक दिन राजा दक्ष ने यज्ञ कर रखी थी, अब ये एक ही बात को सिद्ध करने की खातिर कम से कम 6 कथाओं का प्रमाण जोड़ना पड़ता है, जब यह बुद्धि ठिकाना आती है हमारी, इतना बिगड़ा हुआ ज्ञान हमारा हो चुका है। अब वह घर पर क्यों गई थी जबकि माता पिता ने उसको कह दिया था हमारा नहीं बढ़ जाएगी, ऐसा क्या हुआ? एक बार कहते हैं रामचंद्र जी सीता के वियोग में और बणबण में भटक रहे थे, रो रहे थे बुरी त्रियां। पार्वती ने शिवजी से पूछा था कि हे भगवान ये व्यक्ति क्यों रो रहा है, इसने के तकलीफ होगी, आप दया कर दो इस पर, इसके दुख दूर करो। शिवजी कहने लगे पार्वती तू ना जानती इसने, ये तो भगवान है, 3 लोक के परमात्मा, ये विष्णु अवतार हैं स्वयं, इनके किसे दुख, ये कोई लीला कर रहे हैं। अगना भगवान को और इतना रोन की आवश्यकता क्या, आप गलत, मैं नहीं मानती इस बात ने, मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी और सीता का रूप बना के इसके आगे जाऊंगी और जब देखूंगी ये पहचानेगा कि नहीं पहचानता। शिव जी बोले या गलती मत करना, अक अच्छा को ना करूंगी, करना आगे शिव जी चले गए पाछे तो सीता का रूप बना लिया और रामचंद्र जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसने सोचा तो न्यू था कि लेब तेरे जो है ना छाती से लावेगा और बड़े दुख नो कहेगा, बता कि क्यों कर पाई, कहां गई थी सीता तू, मैं तो मर गया होता तेरे बिना, ऐसे ऐसे मतलब वो अपने मन की कल्पना वो पार्वती लेकर गई। और जब भगवान रामचंद्र जी ने देखा उसका नहीं, तेनो बोली हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी तू कहां आ गई, और भगवान शिव ने की छोड़ आई, न्योकनते हुआ तो गढ़ों पानी पड़ गया। कहने लगी आप तो सच्ची भगवान शिव ठीक कह रहे थे, आप तो भगवान हो, आप जानी जान हो, न्यो कहकर वापस आएगी। और शिव जी के मन में भी कल्पना चली गई कि वह पक्की अनाड़ी से मानने को ना, जो एक बार मन में ठान लेकर क्या होगी उसका हमने, तो पूछा कि तुम परीक्षा ले आई, अक ना जी मैं कौन है लेकर आई परीक्षा, अक अच्छा झूठ भी बोला ऊपर तय, फिर आसन लगी अग्नि साची को थे वह तो साचे भगवान से, बोला ठीक है तेने मेरी मां का रूप बना दिया पार्वती, आज मेरे पत्नी रूप में मेरे लिए स्वीकार्य नहीं रही, आज से तू मेरी मां के रूप में है। अपने मन में ऐसा क्षोभ करके और भगवान शिव जी उसने कटा कटा रहने लगे। ये पहले जन्मों की कथा सुना रहा हूं, इस बात में पार्वती भी जाने थी कि जिद का पक्का यो विषय, ईव यो कति नहीं माने चाहे धरती इधर से इधर हो जाए। उसने सोची यो तो मुंह तो बोला ना, और कोई अड़ आदमी ना, मेरा टाइम क्यों कर पास होगा, तो अपने घर ने चाल, इसका भी आंट लाऊंगी थोड़े दिन। क्यों हो गया मात पिता, भाई पिताजी करड़ा बोलेगा माता जी बोलेगी, ऐसी अपने मन में कल्पना करके पार्वती अपने घर आ गई राजा दक्ष के घर पर। उस दिन कुदरती क्या हुआ कि वहां पर यज्ञ हो रहा था, राजा ने समागम करवा रखा था, और उसमें क्या होता है कि सभी लड़की और जमाइयों को बुलाते थे वो राजा लोग, यज्ञमय सभी अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता था। तो वहां पर देखा कि जो रिश्तेदार नहीं आए थे, कोई बहन नहीं आई थी, उस बटेऊ का हक न्यारा आसन और जितनी भी पूजा हरकत चढ़ी थी सब की उसके साथ चढ़ाई हुई थी। اور سارا سامان اس کا کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے کہ وہ نہ آن پائے کوئی بات نہیں. تو پاربتی اپنے گھر میں گئی, جا کے دیکھا سارے منڈپ پر گھوم کے نام لکھ رکھا کہ فلانا یہ جمائی یہ اس کا آسن ہے, یہ فلانے دیو کا یہ اسی کا. تو وہاں سارے کا گھوم کے اور کوئی منہ اتنا بولا اس نے. اپنی ماں کے پاس گئی, اس نے دیکھا کہ شیو جی کا کتنا ذکر بھی کوئی نہ اس کے پتی کا. تو اپنی ماں سے کہنے لگی, ماں آپ نے اپنے جمائی کا کتنا ستھان بھی نہ چھوڑ رکھا. نہیں ولی بے بے اس نے اپنا پیچھا چھٹوانا تھا, اب اس کا باپ عیسائی ناڑی اریا بھی ناڑی ہے, جب اپنی مرضی سے شادی کر گی میں کیوں بیچ میں پیس ہوں. کہنے لگی, بھائی منت بے رہنا بیٹی, تیرا باپ جانا اور تم جانا, نہ وہ میری مانتا اس نے پوچھ لے. وہ اپنے پتا کے پاس گئی, کہنے لگی, پتا جی آپ نے سبھی بہنوں کے جتنے جمائی بٹے وہ نہیں آئے ان کا حق در رکھا اور میرا کو نہ. تو میں بولا تو بلائی کس نے اڑائی کس لیے, ارے ایسے نرباغ کا میں کون وہ رکھا کرتا, وہ تو پشو ہے آدمی تھوڑا ہے, گڑ میں سانپ اس کا سارا دن بنےلیاں تھیں کچھ دن جا اسے نڑ دکھا کے میں نے دلوس کٹوانا اپنا. اس بات کا وہ کریڈی کالی مائن گی, اگلا تری یگ کرواؤں پوری. جا کے ہون کڈ میں کود گی, کیوں نہ تو شیو جی کے ستھان پاس ٹھکانا اس کا, ارنا مات پتا مادر. اس نے سوچا لے بھی وہ کام کر دوں کراؤں تری یگ پوری. اب کہتے ہیں اب کہاں لانا چاہتا ہوں بات میں, نو نہ سوچے کہ تڑکے کوئی سی آتم ہتیا کر لے, یہ پوائنٹ نہیں ہمارا کہنے کا بھاؤ. یہ سے میں کہاں سمجھانا چاہتا ہوں, یہ اناڑی سادھنا نہیں کرنی چاہیے, پتی جو کا اس کام کو نہیں کرنا چاہیے, ہم نے یہ ماننا چاہیے اپنی, تبھی جا کر یہ ایسی درگھٹنا ہمارے ساتھ نہ ہوتی ہے. ایک نہ کہیں دوسرے نہ مانی کہیں کبیر دونوں گیانی, اگر وہ اٹاڑا کر دیتی اور مان لیتی اس کی بات کو ایسی گھٹنا کیوں گھٹتی کہ بھائی نہ پریکشا لیتی, چلو شادی کر لی تھی ہوگی, ارے یہ کام اور اس کی بھی اس کے انوسار بھی نہیں چل پائی ہوا. اب کہنے کا بھاؤ میرا یہ سبندی چھوڑ گریب داسیوں کا کہ اس کا وہ شریر ختم ہو گیا, اون میں وہ مر گئی, شریر کا چام جل گیا ماس جل گیا اور وہ کنکال کتی کاڑا ہو گیا جو باقی ڈھانچہ شریر کا رہ گیا. ادھر سے کہتے ہیں شیو جی نے پتا چلا کہ بھائی کیا ہو گیا, آپس میں سو بہ لڑائی ہو ماری, ماری بات ہم جانے اور وہ اڑت جڑی کیسے. تو کسی نے جا کے بتا دیا جی ایسے ایسے ان کا انادر کیا. کہنے بولا اچھا میں کرتا ہوں اس کا علاج. وہاں سے کہتے ہیں اپنی جٹایا سے ایک ایسے بال پاڑیا اور اس کو دھرتی میں پٹک دیا اور اس سے ایک بیر بھدر نام کا ایک یکس اتپن ہوا. اس کو حکم دے دیا کہ سینا لے جا اور دکش کی گردن کاٹ دے. اس یگ میں کہتے ہیں برہما بھی وشنو بھی دونوں آئے ہوئے تھے اور وہ باغ جب پتا چلا انہوں نے کہ پاربتی مر لی اور شیو جی کو وید لاگ لیا اور ای بھائی وہ چاڑا پڑے گا. اس نے تو کہتے ہیں ویر بھدر کو شکتی دے کر بھیج دیا, تو کہتے درما نے تو ڈانک ٹھوک دی بھاگ لیا, درما بھاگ گیا اور دکش نے پرارتھنا کی بھگوان ہم نے تیرے آسرے پہ تیرے سارے تو یگ کری تھی اور آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. برما جی بولے بھائی دیکھ بات سن راجا, ویر بدر کے سامنے ٹکڑ گی ماری ہمت کوئی نے. برما جی کھس گیا, اب بشنو جی بھی کھسکن لا گیا. یہ شیو پران میں کتھا ہے کہ دیکھو انہوں نے سوچا میں آپ پکڑ کے بتاؤں. سو شیو پران جو کہ ہمارے پرمانک شاستر ہیں, بشنو جی بھی کھسکن لا گیا تو چرنا میں پڑ گیا. دکش نے بولا مہاراج جی آپ تو چھوڑ کے نہ جاؤ. تو وشنو جی بھی کہتا بھائی دیکھو مارے بس کا سودا ہی اس ہے کوئی نہ, ہم تو یگ کرانا آئے تھے کہ تھارے یگ اوٹن آئے لڑائی اوٹن آئے تھے. نے بولا جی کچھ بھی کرو میں اکلا چھوڑ کے مت جاؤ. وشنو جی کھتے کھڑے ہو گئے, ویر بدر آ گیا سبھی سیناؤں کو راجاؤں کو کاٹتا مارتا, وشنو جی کے سامنا آمنا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وشنو جی کو نے اپنا جو پہلے تو تیر چھوڑیا تو اس نے اپنے ترسول سے اس کا وہ تیر کاٹ دیا وشنو جی کا. پھر کیا کہتے ہیں کہ اس نے سدرشن چکر چھوڑیا, سدرشن چکر بھی اس نے اپنے ترسول سے کاٹ دیا اور وشنو جی ایسے ہو گئے جیسے مورتی ہوئے اگر پتھر کی ستبھ ہو گئے. شیو پران میں آگے لکھا ہے کہ وہ وہاں کے وید منتر بولنے والے سنت بھگتوں نے ودوانوں نے ایک منتر بول کے भगवान विष्णु की सतबता, यानी जो कति अल्लाह था ना टहला था, पत्थर की तरह हो गया था, वो भंग करी। फिर वो एकदम होश में आया और फिर वहां से भाग गया, चले गए भगवान विष्णु। आगे वो वीरभद्र ने जाके राजा दक्ष की नाड़ काट दी। ये लंबी कथा, अब इसको यही करते हैं। फिर कहते हैं भगवान शिव ने ये ज्ञान हो गया कि ऐसे ऐसे पार्वती को मार दिया, तो वो उसने पता भी चल गया कि दक्ष की नाड़ भी काट दी वीरभद्र ने। कई देवताओं ने जाके प्रार्थना करी भगवान शिव से, अके भगवान कोई बात ना, आपस में सौ बकवासनी होती है, पर राजा दक्ष के प्राण बख्श दो। कहने लगा भाई कोई ऐसा प्राणी ले आओ जिसकी नाड़ काट लाओ और ताजी गर्दन कटी हो, मैं राजा दक्ष की गर्दन दड़ पर ला दूंगा, जीवित हो जाएगी। अब वो शीश नहीं लग सकता इसका। कहते हैं फिर जाकर के एक बकरे का काट ले सिर, राजा दक्ष के बकरे का सिर ला दिया, वो जीवित हो गया। फिर भगवान शिव ने क्या किया कि उस पार्वती के उस कंकाल को उठाया और अपने कंधे पर धर लिया। इतनी ममता उमड़ाई कि पार्वती मैंने तो हंसी मजा वैसे ही करा था और तन तो जुलम पाट दिया, ये काम नहीं करना था। इतना प्रेम इतना भाव उसमें हो गया, उस हड्डों में भी ममता फंस गई उसकी। कहते हैं उसके हड्डों ने उस कंकाल को लिए लिए भगवान शिव जी, और पर्वत पर्वत पर रोता हुआ घूम रहा है। कई वर्ष बीत गए, हजारों लिख रखा, हजारों वर्ष ऐसे बीत गए। उधर से भगवान विष्णु ने सोचा कि जब तक इसके ये हार्ड खत्म नहीं होंगे, इतने इसकी ममता टूटे को ना। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि इस पार्वती के हार्ड खंडा दे, खत्म कर दे कंकाल को। उसने जाके उस कंकाल को ऐसा धमाका कराया, धमाका हुआ कि वो कितने नाक पड़े, कितना कान पड़े, कितना हाथ पड़े, कितना शरीर पड़ा। तो वहां कहते हैं नाक पड़ी उड़ा, आंख पड़ी उड़ा नैना देवी, आंख पड़ी उड़ा कि मैं और देवी। ऐसे ऐसे लोगों ने वो आस्थाएं बनाकर वह मंदिर बना दिए, बाकी जो बना कहते हैं और मंदिर बन गए। अब इस प्रकार इतना प्यार भगवान विष्णु शिव जी का पार्वती में प्रति जन्म रहा, और उसके बाद भी उसने वो मंत्र नहीं दिया। अब नाम की महिमा, अब नाम कैसे काम करे और फिर उसकी रेणी कैसी हो आप भगजनों की, तो दोनों मिलकर जब ये अपना पूरा काम करती है। तो क्या हुआ, अब इस प्रकार भगवान शिव जी जब घर पर आए, अब वहीं लाते कथा को कि नारद ने बता दिया था कि माता भगवान शिव के पास एक अमो ऐसा अमर मंत्र है, अगर आपने वो दे दें आपका बेड़ा पार हो, आप इतना नहीं मरो जितने शिव जी नहीं मरे, इतने आप अमर हो जाओगी। जित भगवान शिव की सबसे ज्यादा आयु है, ब्रह्मा से भी और विष्णु से भी। तो श्याम ने जब भगवान शिव आए तो जैसे पहले वो बात करती थी अपने पति रूप में, व्यवहार कुछ और होता है, वो एक घर के आम सदस्य जैसा व्यवहार हम करते हैं, पत्नी से भी पति ऐसा ही करता है। और जब उसने नो पता चला कि तो अमर मेरी तो जो ना जान इनकी मुट्ठी में, और ये इतनी महान आत्मा, और आपने तो कुछ भी कोई नहीं सोची मैंने तो इसके बारे में, और मैं तो इनको पति समझ के कई बार अनादर भी कर देती थी। जब वो आते हैं भगवान शिव जी घर पे, कहते चरणा में गिर जाती है, रो रो कर रुदन मचावे। तो वो कहने लगा कि की बात से पार्वती, आज ऐसी दिक्कत क्या हुई आपको, किस चीज की आवश्यकता तो साफ साफ बता। वह कहने लगी महाराज जी मेरे को जरूर पाप हुआ है, मैं गणी पापणी हूं हैं, और इस करके आपने मेरे से एक इसी अनमोल चीज छुपा रखी। हे भगवान एक बात बताओ, अब क्या कि मैं जब मरती थी आपका जी दुख नहीं पाया करता, कब मरती थी तो अभी मरी कहां है, अग्नियो ना बकाओ, ये खप्पर किसके हैं, ये कंकाल किसके सिर के। अब शिव जी ने सोचा तो भैया दूसरी भाषा बोला, ये इसके लेवल का ज्ञान नहीं है। नो बोली महाराज जी मेरे से कोई गलती हुई होगी, और मैं मरूं और आप देखते रहो और आप मुझे प्राणों से भी प्यारी समझती हो। तन्यो बोला पार्वती ये तेरा ज्ञान तक हो ना, न्यू बताते रहता हूं, बताया किसने? तो उसने बताया कि नारद जी आए थे और वो मेरे को बताएंगे कि आपके पास एक ऐसा अनमोल मंत्र है और आप मुझे कृपा कर दे दासी पे, हे महाराज जी मेरी दुर्गति मिट जा, नो बलाज दूंगा तेरे को नाम। आज तो नाम पाने के अधिकारी होगी, आज जो तेरे अंदर वो कमल है परमात्मा की भक्ति प्रवेश करने वाला आज खिल चुका है, आज तेरा हृदय नर्म कोमल हो गया कमल की तरियां, इस पर कोई मैल नहीं है। और इस भाव से जो नाम प्राप्त करता है प्राणी, वो नाम अंदर जाकर काम करता है। तो जब कहते हैं यू नाम नो को जा दूं, आ मेरे साथ अमरनाथ, जहां मंत्र कहते हैं अमरनाथ, इतने स्थान पर ले गया उनको सुन स्थान, और वहां पर भी एक सूखा वृक्ष कति जिसके पत्ते भी नहीं थे, सिर्फ वो खूंड से खड़े थे, नारे नारे टहनियां सूखी हुई, और नो देख लिया कि वृक्ष में हो सकता है कोई पक्षी आ जा, पत्या में मैंने दिखा नाई, और यहां पर मैं देखता भी रहूंगा कि क्यों प्राणी इस मंत्र ने ना सुन ले और वो अमर ना हो जावे। तो महाराज कहते हैं तहां एक सुख का तरवर ता क्या ता शिव को आसन कहां रखा, आसन माने वहां पर अपना बैठा लिया पार्वती को, आप भी बैठ गया। और फिर कर से लाई तीन तारी, उड़ गए पक्षी नर और नारी, ऐसी भयंकर आवाज हुई तीन तारियों की जैसे बम पाटा करे, आसपास के पक्षियों भी कोई था वहां पर तो वो भी कहते काफी दूर उड़ गया। उसके अंदर एक वो खोगर थी, एक ऐसा थोथा स्थान था खोखलाहा, उसमें एक तोते मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, उसने तीन तारी जब बजाई भगवान शिव ने, जितने अंडे जो ठीक थे उनमें बच्चे बनकर वो भी उड़ गए, लेकिन एक गंदा अंडा बाकी रह गया, और वो अंडा एक प्राणी का था जिसके निमित्त वो जुनी भोग रहा था, उस गंदे अंडे में भी वो प्राणी अपना पड़ा हुआ सिड़ रहा था। ये जीव आत्मा इस शरीर ने जलती से नहीं छोड़ती, मरे पाछे भी वो कितना होगा निरंत एक्सीडेंट हो जाए या कोई किसी कारण से कंडम हो जाए तो वो प्रेत वो आत्मा जो है इसके अंदर घुसी रहती है, ढूंढती है यू फेरने में चल पड़े, ये नहीं चलता। फिर इतने बाद जब तक इसको फूंक के सभा नहीं कर देते या गार्ड नहीं देते या नहर में नहीं फेंक दरिया में नहीं डाल देते, इतने हुआ जीव इसमें से इसने खाली नहीं करता। तो वो गंदा अंडे का एक जीव था, उसका निमित्त वो था, उसका वहां पड़ा रहा, अंडा खत्म हो लिया था, वो गलत बच्चा बनने जोगा नहीं रहा, उसमें जो उसका अंग नहीं बन पाओ था। अब भगवान शिव ने कहते हैं वहां पर वो अपना कथा सुनानी शुरू की, अपनी कृपा से उस माई को अंदर के कमलों के बारे में जानकारी दी, और वो इतना जानते सुने कि उसका डर हो रहा गात में कदीब के फिर ना मर जाए, भगवान शिव छूट जाए किन खाड़ा सादी हो है, हैं रोले पड़ पड़ के, और ये सारा झंझट मिट जाएगा जब तक हम रहेंगे इतने इकट्ठे रहेंगे, इतनी लगन लाके उस माई ने और ध्यान तो बात सुनी, वो मुंह मत का डर, वो उसी स्थान पर उसकी सूरत जावे, जैसे मूल कमल बताया तो माई का ध्यान मूल कमल पर गया और वहां की प्रक्रिया बताई कि ये गणेश जी का स्थान है, यहां पर उस गणेश का लोक है, इस पर ऐसे मंत्र जाप करना है, आगे फिर ना भी स्वाद चक्र है उसमें ब्रह्मा और सावित्री का मंत्र है, ये मंत्र जाप करना है, वहां दोनों का वास है, ऐसा सौर्य बताए, एकदम वह शरीर के अंदर घुस गई, शरीर के अंदर सूरत जाती है और उन पर ध्यान लगाती लगाती और यहां पहुंच जाती है। जब तक कंठ कमल तक ये प्राणी रहता है इतना वह हंकारे भर रही है, हां जी हां जी हां जी ऐसे देख रही है, हां जी, जब ये यहां सुन में पहुंच जाती है तो हां जी करना बंद कर दिया, जो ऊपर का पक्षी जो गंदा था अंडा उसमें तोता बन गया और वो लग गया हां जी कहन, अब उसके भी गेल चले वो मंत्र। इतने में कहते हैं भगवान शिव ने देखा इसकी तो समाधि लग गई या बोल नहीं रही, ये आवाज कहां से आई, जब ऊपर देखा वो तोता जो है वहां से उड़ लिया, भगवान शिव उनका पीछे पड़ लिया,
वो जाकर तोते के शरीर ने छोड़कर बेस वेद व्यास की पत्नी ने जमाई ली, जमाई के द्वारा वो सूक्ष्म रूप के द्वारा और गर्भ में चला गया और वहां जाकर के सुखदेव का के रूप में फिर 12 साल उस मां के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुआ। ये सुखदेव जी की उत्पत्ति भी इसी कथा में आएगी। इस प्रकार उस पार्वती को कबीर भगवान शिव ने अमर कर दिया। कितना अमर कर दिया? जब तक भगवान शिव रहेंगे पार्वती उनके साथ रहेगी, और जब महाप्रलय होगी, जब ये सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फिर दोबारा इस मृत्युमंडल में ऐसे चक्कर काटेगी जैसे पहले काट रही थी। शंखों दे दरी तन योनी नो तथके का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, भर में पुत्र व्यास सुखदेवा। अब देखो हमारे अंदर एक 9 तत्व का शरीर और है, ये 5 तत्व के शरीर के अंदर है। उस शरीर में, इस शरीर के माध्यम से हमने उस 9 तत्व के को परिपक्व करना है और उसके माध्यम से हमने मुक्ति पानी है, लेकिन हम सच्ची साधना ना करके वो हमारा कच्चा शरीर रह जाता है, फिर दुनिया पाते रहते हैं। गरीबदास जी महाराज लिखते हैं कि मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा और भर में पुत्र व्यास सुखदेवा। मोक्ष मुक्ति का उसके भाव भेद नहीं पाया उसने भगवान सुखदेव जी ने अपनी, पहले बहुत घना दुख पाया, थोड़ा कितने जन्म भोगे और फिर उसका कोई ऐसा कर्म आगे अड़ गया कि भगवान शिव की वो कथा सुनने से वो तोते के शरीर में प्रवेश कर गया और उस मंत्र से उसके जो अंदर सूक्ष्म शरीर था उस वो अमर हो गया। और वो अमर होकर के, उस अमर का तात्पर्य ये नहीं होता कि उसका जन्म मरना हो, इस अमर होने की कई परिभाषाएं हैं। वो तत्व ऐसा बन गया कि उसमें यादाश्त होगी, उसको इतनी यादाश्त होगी उसने सूक्ष्म शरीर में कि अभी पिछले जन्म मेरे बहुत मुंडे बीते और इब क्या गलती करूं नहीं, इसको इतनी चेतना रहन लगी तो उस मां के गर्भ में प्रवेश कर गया और बाहर नहीं आया। बाहर नहीं आया तो कहते हैं काफी दिन के बाद 12 वर्ष जब बीत जाते हैं तो भगवान शिव कहता है कि बाहर निकल तो न मारूंगा, और वो नौका में बाहर निकलू को ना, विष्णु को याद किया, विष्णु जी आगे कहने लगे की बात है भोलेनाथ जी कि मेरे ज्ञान को चुरा कर ये जीव और इस वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में है और इसको मैं खत्म करूंगा। क्यों भाई? भगवान विष्णु बोले कि इसने मेरा मंत्र चुरा लिया तो के हो गया कि ये अमर हो गया, अमर हो गया फिर मारेगा क्यों? कर जब आप ही कह रहे हो कि आपके मारण से ही बाहर हो लिया तो इसने मारोगे कैसे? क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति होती है कि इस मंत्र से इस प्राणी को इतने दिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खत्म कर सकते, कुछ लिमिटेशन है उसकी, ये बहुत लंबा विस्तार है। कन्यो बोले जब यू अमर हो लिया और इतने दिन तक तू मार नहीं सकता वर्षों तक है, फिर यहां क्या की खातिर खड़ा बावड़े चाल चालेंगे? तो फिर विष्णु जी के मन में आती है कि सुखदेव गर्भ में, सुखदेव बोला है कहा महाराज जी कि तू बाहर आ जा। विष्णु जी कहने लगे तू बाहर आ जा, अक मैं नहीं आऊं बाहर, ब्रह्मा को बुलाओ। ब्रह्मा भी बुला लिया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों कहने लगे भले पुरुष एक काम तक कर दे, तू बाहर आ जा, 12 वर्ष हो गए मां के पेट में, अगर आगे माताएं 12 वर्ष तक बच्चा ने गर्भ में रखेंगी इनका तो जीना आराम हो जाएगा, ये 9 महीने बारी हो जाए तू बाहर आ जा भाई, या गलत रीति मत ना गिरे। न्यू बोला जी कति नहीं आऊं, पर एक शर्त पर बाहर आऊं कि तुम अपनी इस माया ने जिसके कारण हमें यहां पर अज्ञान बनाते हो, हमारे ऊपर अज्ञानता का पर्दा छा देते हो, इस अपनी माया ने हटा लो, अग दबाइया तो ना हटे हमारे तय। हम कुछ समय रोक सकते हैं, कितनी देर रोक सकते हो? कि जितने भैंस के सींग पर राई रख दे और वह कितनी देर उस पर रह सकती है? भैंस का सींग ऐसे गोल, اور بھینس نسلی ٹکا کو نہ کنواں زوگاڑا کنواں سر مارا اس پر رائی رکھتے ہی نیچے اتنی دیر یعنی اکسن بھی زیادہ ہو اتنی دیر کام روک سکے فالتو مایا نہیں روکا جو بلا اتنی دیر روک دو. کہتے تینوں دیوا تھم بھی مایا اور گرب انیس سے جونی سے باہر آیا سکھ دے سکھ میں اوپجا رائی سنگھ سمو نو ناتھ اور سدھ چوراسی سنگ اپجے تھے دو. جتنے اس سمے میں وہ اتنی دیر جو مایا روکی تھی اس دوران جتنے بھی منوش شریر کے پرانیوں کا جنم ہوا تھا اس سمے وہ ان کو اتنی چیتنا رہے گی جس میں نو تو ناتھ بن گئے اور چوراسی وہ آتما سدھ ہوگی. 93 اور ایک سکھ دیو آیا اس اکشن میں اتنے جیو اتپن ہوئے تھے اس منوش شریر میں اور ان کو اتنی لگن چیتنا رہے گی کہ وہ اپنی آتما کے آدھار پہ کیونکہ جاگرتی رہی اور پچھلے کرموں کا ان کو گیان رہا کہ پاچھے بہت گنے دکھ پائے کبھی گدے بنے کبھی گدی بنی. سکھدیو رشی اپنی آتم کتھا بتاتا ہے. ایک مہاتما بولیا رشی جی کہ بھائی سکھدیو تو بہت دھیان مگن رہتا ہے تو تھوڑی بہت دیر بیٹھا بھی کر ہمارے ساتھ